राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका श्री श्री गिरधारी जी की जय। नेत्रिला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। All glories to the assembled devotees. All glories, all glories to Jai Guru, Jai Gaurang, Jai Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद प्रथम अध्याय भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय नामक प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 49 और 50वां लिखा है केवल ना 49 श्लोक इस प्रकार हैं। प्रदाये मृत्यवे पुत्रान मोचये कृपणाम इमाम सूता में यदि जाये रन मृत्युर्वान मृियत मृियत चे। विपर्ययो वा किं न स्याद् गतिर्धातुर्दुरत्यया विपर्ययो वा किं न स्याद् विपर्ययो वा किं न स्याद् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्त पुनरापते विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्त पुनरापते विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्त पुनरापते कृष्णा, हमारे हरे कृष्ण मंदिर की एक प्रणाली है कि श्लोक का गान जो है प्रवक्ता के पश्चात जो वरिष्ठ वैष्णवगण हैं पहले वो दोहराते हैं, फिर बाद में अन्य गण। यहाँ अजदास प्रभु, लोकाध्यक्ष प्रभु सब 22-25 साल पुराने भक्त हैं, प्लीज़ पहले वो दोहराएं फिर बाकी सब दोहराएं। माताओं ने भी इसी क्रम को जारी रखें, प्लीज़। अजदास प्रभु, चश्मा नहीं और अभी बोल सकते हैं, जो भी भक्त बोलना चाहें प्लीज बोलिए, बोलिए जो भी बोलना चाहे भी बोलिए। माताओं ने
Gracias.
प्रदाय, देने का वादा करके, मृत्यवे देवकी के लिए काल स्वरूप कंस को, पुत्रान पुत्रों को मोचये आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए, कृपणाम निर्दोष इमाम देवकी को, सूता पुत्र में मेरे यदि यदि जायेरन उत्पन्न होंगे मृत्यु कंस वा अथवा ना नहीं म्रियेत मरना होगा, चेत यदि विपर्यय इसके विपरीत वा अथवा किम क्या ना नहीं स्यात हो सकता है, गति गति धातु प्रारब्ध की दुरत्यया समझना मुश्किल है, उपस्थिति अभी प्राप्त होने वाला निवर्ते रुक सकता है, निवृत्त देवकी की मृत्यु को रोकने पर, पुनः आपते भविष्य में फिर हो सके तो मैं क्या कर सकता हूं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है, वसुदेव ने विचार किया, मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूं। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दें, और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। तात्पर्य, अपने पुत्रों को कंस को सौंपने का वचन देकर वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के प्राण बचाना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा, हो सकता है भविष्य में कंस मर जाए, या हो सकता है कि मेरे पुत्र ही न हो। यदि पुत्र उत्पन्न भी हो और मैं उसे कंस को दे दूं तो कंस उसके हाथों मर सकता है, क्योंकि देववश कुछ भी हो सकता है। यह समझ सकना बहुत कठिन है कि देव द्वारा किस तरह व्यवस्था की जाती है। इस तरह वसुदेव ने निश्चय किया कि मैं देवकी को मृत्यु के आसन्न संकट से उबारने के लिए अपने पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देने का वचन दे दूं। ओम अज्ञानं तिमिरांगस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानिबन्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज हम लोग इस श्लोक से दो तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं सीख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु के निकट है, मृत्यु उसके सामने है, उस समय व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए। धीरस तत्र न मोहयति, जो धीर व्यक्ति होता है वो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है, वो बौखला नहीं जाता। दूसरा, एक व्यक्ति जिनके आश्रय में कुछ लोग हैं तो उनके हर प्रकार से रक्षा करना, प्राणों की रक्षा करना, उनका पालन पोषण करना, ये वचनबद्धता है। तभी ही व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जैसे कि यहां पर वसुदेव जी देवकी के साथ अपने घर की ओर प्रयाण कर रहे हैं और उनका साला जो है या देवकी का प्रिय भाई, क्योंकि कंस को देवकी बहुत प्रिय थी अपनी दूसरी बहनों से ज्यादा, अभी नवविवाहित दंपति हैं और जा रहे हैं और अभी अभी विवाह में अग्नि के समक्ष सप्तपदी में सात फेरे लेते समय कुछ वचन दिया है और अभी समय आ गया उसको पालन करने का, तो अपने आश्रित व्यक्तियों की रक्षा करना। और तीसरी बात यह है कि देखिए, भगवान अपने भक्तों के संकटों को किस प्रकार हरते हैं, विशेष करके जब भक्तों के आगे मृत्यु हो, और भक्त कैसा करते हैं। और सबसे वसुदेव जी जो महत्वपूर्ण बात सोच रहे हैं वो है कि दैव योग से कुछ भी हो सकता है, तो मैं अभी फिलहाल इस समय क्या करूं, मेरा धैर्य मैं नहीं खोऊं। यहां पर देखिए कि आकाशवाणी हो गई कि हे कंस, देवकी का आठवां पुत्र जो है तेरा विनाश करेगा। और कंस ने बिल्कुल अपनी तलवार निकाल ली और अपने बहु बलवान ऐसे पंजों से देवकी के बाल पकड़ के उसको घसीटने लगा और उसको मारने के लिए एकदम उद्धत हो गया, एकदम तत्पर हो गया कि ये देवकी ही नहीं रहेगी तो ना उसके कोई संतान उत्पन्न होंगे, ना उनके संतानों से मुझे कोई मृत्यु का भय रहेगा। हम लोग एक आम तौर पर हिंदी में कहावत कहते हैं ना, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब बांस होगा तो बांसुरी बजेगी, बांस की बांसुरी बन सकती है और वो बज सकती है। बोले बांस ही काट के उखाड़ के फेंक दूं तो बांसुरी नहीं बनेगी। या तो कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो कंस ने बिल्कुल ऐसे ही विचार किया कि मैं ऐसे करूं कि मेरा मृत्यु ही ना आए, क्योंकि इस संसार में प्राय उच्च कोटि के संतों को छोड़कर, वैष्णवों को, उच्च कोटि के भक्तों को छोड़कर, हम सभी भक्त होने के बावजूद भी, मेरा अपना पता है मुझे, आपका नहीं कह सकता, पर हम सभी ये चाहते हैं कि हम कभी मरे ना। और हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हम कभी ना मरे। यदि अपने हृदय को टटोल के देखेंगे, पूछेंगे कि हम ये तिलक क्यों करते हैं, कंठी माला क्यों जप, कंठी माला पहनते हैं, जप माला पर जप क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं, सेवा क्यों करते हैं, डोनेशन क्यों लाते हैं, क्यों देते हैं, क्या हमारे हृदय में एकदम उत्कट कृष्ण प्रेम आ गया? किसके हृदय में आ गया उत्कट कृष्ण प्रेम? कृष्ण प्रेम है और मुझे कृष्ण की प्रेममयी नाम लेना है, जो रस से परिपूर्ण, ऐसा जो कृष्ण का नाम है, ऐसा कृष्ण का नाम हमें सतत निरंतर लेते रहना है। यह परिस्थिति है तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको, ऐसे भक्तों को प्रणाम। हम लोग कहते हैं ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, तो ऐसे भक्तों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है कि वाह क्या कृष्ण का नाम है और उसको लेने में कितना आनंद आ रहा है। ऐसे हो रहा है कि ये 16 माला एक बोझ है, उसको जल्दी खत्म करूं आज का दिन में। हाश, आज मेरी माला पूरी हो गई। हम 16 माला, हमें 16 माला जप करना है, पर हम करते हैं 16 माला जप पूरा करते हैं। अंतर समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आया ये बात कि हमें 16 माला जप करना है, कि हमें 16 माला जप पूरा करना है। क्या करना है? 16 माला जप करना है कि वचन दिया है या वचन देने के लिए जा रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, तो 16 माला जप पूरा करना है। क्या करना चाहिए? 16 माला जप करना चाहिए या 16 माला जप पूरा करना चाहिए? हाँ, 16 माला जप करना चाहिए, 16 माला जप पूरा नहीं करना चाहिए। हाँ, 16 हो गया तो भी फिर काम पे कौन जाएगा? चालू ही रखेंगे तो काम पे कौन जाएगा? आप रिटायर हो गए इसलिए आप बोलते चालू ही रखो। लेकिन यहां अधिकांश लोग तो रिटायर नहीं बैठे हैं। कितनी माला करते हैं आप? 51 से ज्यादा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो हमें 16 माला जप करना है, 16 माला जप पूरा नहीं करना है। तो जब हम 16 माला जप करते हैं तो हमें मृत्यु का डर नहीं लगता है, जब हम 16 माला जप करते हैं तो। लेकिन अगर हम 16 माला जप करते हैं तो 25-30 साल के बाद भी ये प्रश्न रहता है कि मेरा जप में मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो जप पूरा करते हैं रोज रोज, जप शुरू करते हैं और पूरा करते हैं, शुरू करते हैं पूरा करते हैं, क्योंकि जप शुरू ही करते हैं पूरा करने के लिए। जप इसलिए नहीं करते हैं कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। हरे कृष्ण महामंत्र का जप का अर्थ क्या है? हे श्री राधा गिरधारी जी, मुझे आपके शरण में स्वीकार कीजिए और मुझे सदैव आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए, है ना? यही अर्थ है ना, कि मैं जन्मों जन्मांतर से आपसे अलग था, मैं आपको भूला हुआ था, आपसे बिछड़ा हुआ था, और अब मुझे समझ में आया है कि वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ है। मुझे समझ में आ गया है कि सब कुछ कृष्ण का है, और इसलिए हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, और इसलिए आप मुझे आपकी शरण में स्वीकार कीजिए और मुझे आपकी सेवा प्रदान कीजिए। ऐसा 16 माला जप होता है ना। और हम लोग अगर जप शुरू ही करते हैं पूरा करने के लिए कि आज देखो आज मैं लेट उठा हूं, 6 बजे उठाऊं, मुझे जल्दी जप पूरा करना है, रात में इतना पूरा कर लूंगा, और दिन में इतना फिर काम पे जाना है, वो ठीक है, वो सोचना है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़ा दोष है या अपराध है। शुरुआत में 2-5 साल ऐसे हो भी सकता है, पर प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा दैनंदिनी या नित्य प्रतिदिन के जो कर्तव्य है उसको करते करते भी हम जप करें, हम जप के लिए ही जगे और दूसरे दिन और अच्छी तरह जप करने के लिए ही सोए, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए कहते हैं ना, एक बड़ा सुंदर भजन है गुजराती में कि वो कहते हैं, ओ श्रीनाथ जी आवजो तमे वाट जोई रहा क्यार ना अमे, अनेक जन्म थी जीवया थड़े, आथड़े मीन्स भटक रहा है, आप शरणनी खबर ना पड़े, आप शरण तो रुदिया विशे श्री महाप्रभु जीविना क्या थी दीसिए, दास आपना जो हशे खरा, खरा मीन्स सच्चा, दास आपना जो हशे खरा भयत जीने सर्वदा फरे, जो यदि आपके सच्चे दास हैं तो वो सदैव निर्भय रहता है, उसको कभी भय नहीं होता है, जो भगवान के दास होते हैं। दास आपना जो हसे खरा भयत जीने सर्वदा फर, सब समय वो निर्भय हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि कृष्ण दास सदा बिंदास, रामदास सदा बिंदास, मायादास सदा उदास। अभी ये तो कितनी अच्छी बात है, कंस के लिए ये सुवर्ण मौका है। आज तक जितने पाप किए, जितने दोष किए, जितने अपराध किए, जितना भी पाप कर लिया कंस ने, लेकिन उसको कितना अच्छा मौका मिला कि हे कंस, जिसका रथ तू हांक रहा है उस देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध कर देगा। ये कितनी अच्छी बात है यदि हमें पता चल जाए तो। जैसे महाराज परीक्षित को पता चल गया कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, बस सीधे एकदम राज्य को त्याग दिया और सीधे बैठ के कौपीन धारण करके, केवल लंगोटी, अपने अस्त्र शस्त्र अलंकार वस्त्र राज्य सब कुछ त्याग करके, जन्मजय का अभिषेक करके, भैया अब तुम संभालो, और गंगा किनारे बैठ गए और हजारों साधु वहां पर जुट गए कि महाराज परीक्षित का भगवत धाम की ओर प्रयाण होने वाला, और उन्होंने केवल भागवत का आश्रय लेकर निरंतर दिन रात कृष्ण की स्मरण किया, श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा। ये भक्त का स्वभाव है। और आसुरी स्वभाव देखिए, कितनी लंबी मुद्दत दी गई उसको, कितना लंबा समय दिया गया कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा विनाश करेगा। लेकिन असुरों का स्वभाव देखिए, असुर कैसे होते हैं, राक्षस किसे कहते हैं, असुर माने यानी कि दांत ऐसे बाहर हैं और रोंगटे खिले के समान हैं और बड़े बड़े रस्सियों के समान उसके सर के बाल है, और एक एक गेंद जैसी आंखें हैं लाल घूम, वैसे भी होते हैं। लेकिन ये जो बाह्य स्वरूप है असुरों का, राक्षसों का, पर ऐसे ही मिलता जुलता हम सभी का आंतरिक स्वरूप भी है। हमारी वृत्ति यदि टटोले हम देखें तो इनसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है ये कंस से। हो सकता है हमारी वृत्ति, आंतरिक वृत्ति, इससे भी भयंकर हो, इससे भी भयावह हो हमारी अपनी वृत्तियां। तो कंस देखिए कैसा दुर्बुद्धि है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपधन्ते नराधमा मायया अपिहत ज्ञानम आसुरिम भावमाश्रिता। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, ये इतना मूढ़ होते हैं, ये मूर्ख व्यक्ति या असुर लोग इतने मूर्ख होते हैं कि भगवान की शरण में जाने के लिए कभी विचार नहीं करते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपधन्ते नराधमा, भगवान कृष्ण उनको गाली दे रहे हैं, हम लोग नहीं दे रहे,
वो कहते हैं नरों में अधम है, नराधम है, नालायक है वो। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपधन्ते नराधमा, ऐसे लोग नराधम लोग कभी भी मेरी शरण में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि मायया अपहत ज्ञानम आशुरिम भावमाश्रिता, सदैव हमेशा के लिए ये आसुरी भाव में रहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य मत्तः प्रभव, वो सोचते हैं कृष्ण नहीं है मैं हूं, अहम सर्वस्य मत्तः प्रभव, मैं संसार का अधिष्ठाता हूं, मैं प्रणय कंट्रोलर हूं, नियंता हूं, मेरे अधीन समस्त सृष्टि होनी चाहिए, जड़ चेतन चल अचल समग्र सृष्टि मेरे अधीन चलनी चाहिए, ऐसी। इसलिए उसकी दुर्बुद्धि ऐसे आई कि देवकी को मार दूं, जो अभी तक उसकी प्राण प्यारी बहन थी, लेकिन जब उसके मृत्यु की बात आ गई तो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब इसको ही मार देता हूं, मेरी प्राण प्यारी बहन है तो क्या है, इसके बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, इसको मार ही दूं मैं, वो भयभीत हो गया। क्यों? पूर्व में कई लोगों की मृत्यु नहीं आई थी, पूर्व में कई लोगों ने मृत्यु को निकट देकर भगवान की शरण ग्रहण नहीं की थी, पर यह दुर्बुद्धि कैसे सोच सकता है, क्योंकि उन्होंने तो ऐलान किया था ना, इन्होंने फतवे जारी किए थे ना, भगवान का नाम कोई ना ले, साधु संतों को बंदी बनाओ, इतने सारे वैष्णव अपराध किए हैं, इतना सारा अधर्म किया है, तो सद्बुद्धि तो आ ही नहीं सकती है कंस को, और इसीलिए नारद जी भी भ्रमित कर दिए कंस को, जब दया आ गई छोटे बच्चे को, देवकी के पहले बच्चे को देखकर जब दया आ गई, बोले नहीं नहीं ये तो मासूम है, इसको मार के क्या करूंगा, और ये तो पहला बच्चा है, मुझे तो आठवें संतान से भय है, इसको मार के क्या करूंगा। तो नारद जी ने सोचा ये असुर कहीं और जी लेगा तो क्या होगा, अब इसको दया वया नहीं, अब इसको मारना ही उचित है, इसलिए उसको भ्रमित किया, बोले एक गोल चक्कर एक बनाया, बोले इसमें आठ बच्चे को खड़ा कर दो, अभी बताओ ये गोल में जो आठ बच्चे खड़े कहां से गिनती करेगा, यहां से गिनती करेगा तो ये आठवा होगा, यहां से गिनती करेगा तो ये आठवा होगा, यहां से गिनती करेगा तो ये आठवा होगा, वो तुझे क्या पता, देवता लोग बड़े ठगावने होते, बड़े ठगते ना असुरों को दानवों को हमेशा, ये तो असुर दानव कुल का भी नहीं था, है दीति के पुत्र दैत्य, दनायु के पुत्र दानव, ये तो वो भी नहीं था, ये तो वृष्णिवंशी था, पर ये असुर भाव में स्थित था, बहुत सारे वैष्णव अपराध किए थे उसने, बहुत सारा अधर्म का कार्य किया, तो भ्रमित हो गया। क्यों? मायया अपिहत ज्ञानम, माया के द्वारा ज्ञान जो है बुद्धि जो है हर ली गई कंस की, और इसलिए ये अपनी बहन को प्राण प्यारी बहन को मारने के लिए उद्दत हो गया कि मैं इसको मार ही दूं, इसके ना कोई बचे। ऐसी परिस्थिति में वसुदेव जी जो है वो विचार करने लगे कि किस तरह मैं अपनी ये पत्नी को रक्षा करूं, किस तरह से मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं, क्योंकि अभी अभी तो विवाह किया, अग्नि की साक्षी में उन्होंने सप्तपदी ली तो उसमें उन्होंने वचन दिया है कि नहीं, अग्नि की साक्षी में विवाह जो होते हैं वो ज्यादा लंबे टिकते हैं, जो डायरेक्ट सीधे कोर्ट में विवाह होते हैं वो टिकते नहीं है ज्यादा अच्छी तरह से, अग्नि की साक्षी में विवाह होना बहुत बहुत जरूरी है, अग्नि की साक्षी में बड़े बुजुर्गों की अनुमति से और वैष्णव और परिवार और साधु संतों की उपस्थिति में, समझ में आ रही है बात, अग्नि की साक्षी, माता पिता की अनुमति और बड़े बुजुर्गों की और परिवार कुटुंबी जनों की उपस्थिति में जो विवाह होता है, ऐसे विवाह जल्दी टूटते नहीं है, ज्यादातर 98% टूटते नहीं है, 2% अब कलयुग में संभावना हो गई टूटने की, आज से 40 साल पहले नहीं टूटते थे, 35 साल पहले नहीं टूटते थे ऐसे विवाह, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमारे धर्म ग्रंथों में चार वेद 18 पुराण 108 उपनिषद श्रीमद् भागवतम और रामायण, इन तमाम शास्त्रों में कहीं भी डाइवोर्स नाम का शब्द ही नहीं है, तलाक छुटा छेड़ा ऐसा कोई शब्द ही नहीं है ये हुआ ही नहीं करता था कभी, ये कभी होता ही नहीं था, डाइवोर्स तलाक छुट्टा छेड़ा ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, ये कलयुग की उपज है, ये नया एडिशन है। तो वसुदेव जी ने अभी अभी अग्नि की साक्षी में सात फेरे लेते समय वचन दिया कि मैं सदैव अपनी पत्नी का सम्मान की रक्षा करूंगा, उनके शील की रक्षा करूंगा, उनके प्राण की रक्षा करूंगा, उसके द्वारा उत्पन्न संतानों की रक्षा करूंगा, वो जिस गृह में निवास करेगी उस घर की मैं रक्षा करूंगा, उसका पालन पोषण करूंगा। अभी अभी तो वचन दे के बाहर आए हैं तो कैसे मरने दें। लेकिन कंस तो महाबलवान है, पूरे राज्य की बागडोर उसके हाथ में है, सारा सैन्य उसके साथ चल रहा है, ये अकेले क्या कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बड़े ही बुद्धि का उपयोग किया। अब देखिए यहां पर माया अपिहत ज्ञानम है, तो दूसरी ओर कृष्ण कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपियांति दे, है ना, हाँ? तेषाम नित्य अभियुक्तानाम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपियांति ते। एक तरफ कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, तो एक तरफ कहते हैं मायया अपिहत ज्ञानम, तो जो कृष्ण की शरण में है उनको कृष्ण बुद्धि देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए। और जो कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही नहीं है किसी भी कारण से, कृष्ण तो यहां तक भी कहते हैं कि आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व, चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई शुद्ध भाव से भक्ति भाव से मेरी शरण में नहीं आते हैं, यदि कोई किसी मतलब से कोई हेतु से यदि मेरी शरण में आते हैं, कोई मतलब है उनको, कोई गरज है कि किसी को धन चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, कोई बहुत दुखी है, आर्तो बहुत दुखी है चारों ओर से घिर गया है, बिजनेस में लॉस हो गया या नौकरी चली गई, बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर में लोग बीमार हैं, पैसे नहीं हैं, आगे कोई काम मिलने की संभावना नहीं है, क्या खाएं क्या करें, आगे कैसे बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, ऐसे चारों ओर से घिर जाए व्यक्ति तो क्या करें, भगवान की शरण में चला जाता है, हे भगवान अब तो रक्षा करो, अब मेरी ओर देखो। भगवान कहते ऐसे जो आर्त व्यक्ति हैं, आर्तो जिज्ञासु, भगवान कौन है, कैसे हैं, किसने ये दुनिया बनाई, मैं कौन हूं, क्यों मैं दुख भोग रहा हूं, संसार में सारे लोग क्यों दुखी हैं, ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति भगवान की शरण में जाते हैं जानने के लिए। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, और किसी को चाहिए हे राधा गिरधारी जी आज मेरा टेंडर पास हो जाए तो मैं आपको दो 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 किलो पेड़ा ले आऊंगा, नारियल ले आऊंगा और जन्माष्टमी में कलश करूंगा। अब देखिए 11-15 हजार में 2-3 करोड़ का टेंडर पास करते हैं, ये रेशियो कुछ ठीक नहीं है, ये समतुलना ठीक नहीं है, कुछ बढ़ाना चाहिए। एक है 2,000, 5,000, 10,000 की बात, उसके सामने टेंडर 1 करोड़ का, ऐसा नहीं, कुछ थोड़ा लेवल में आना चाहिए, ऐसा कुछ तो बैलेंस करना चाहिए 50-50। हाँ तो होता है अर्थार्थी जिसको कुछ चाहिए, और ज्ञानी च भरत सर्व, कोई सोचता है मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके मैं भगवान को जान जाऊं या जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मैं छूट जाऊं। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग भी अच्छे हैं, तो एक तरफ ददामी बुद्धि योगम तम, एक तरफ मायाप्यत ज्ञानम, तो ये तो असुर है, इसने बहुत सारे अधर्म किया है, बहुत सारा पाप किया है, बहुत सारा अपराध किया है, इसलिए ये तो मारने के लिए, लेकिन यहां तो भगवान के द्वारा बुद्धि दिए हुए व्यक्ति हैं, तो इन्होंने क्या सोचा कि किसी तरह से, देखिए दैव योग से कुछ भी हो सकता है, आकाशवाणी हुई है सच हो सकती है, मेरा पुत्र आठवा यदि इसको मारना है, ये इसके भाग्य में है तो इसको जरूर मारेगा, तो इस कारण से मुझे देवकी की रक्षा करनी है। यदि मेरे पुत्र ही नहीं होंगे, क्या पता मेरे भाग्य में संतान है भी या नहीं, यहां तो 8-8 की बात हो चुकी है, आकाश से घोषणा हो चुकी है, आकाशवाणी, हाँ रेडियो उस समय भी था, आकाशवाणी रेडियो का हिंदी भाषांतर आकाशवाणी होता है। तो रेडियो में आ गया, पूरे विश्व को समाचार मिल गया, रेडियो में आ गया, आकाशवाणी हो गई कि देवकी का आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। तो बोले पर यह भी तो हो सकता है कि मेरा पुत्र ही ना हो, यह भी हो सकता है कि कंस उसके पहले उसकी मृत्यु आ जाए और वो भयभीत हो जाए, तो मैं किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा करूं। ये तो मूर्ख है, ये असुर है, ये केवल अपने प्राणों की रक्षा के विषय में सोचता है, दूसरे का नहीं सोचता है। तो जो हमने जहां से शुरुआत की थी आज के इस सत्र की, कि हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे कंस छुपा है कि हम अपना ही सोचते हैं, परंतु वैष्णव तो है वो तो पर दुखे दुखी और पर के सुख का उपकार, पर सुख का विचार करता है, और यदि दूसरा दुखी होता है तो दुखी हो जाता है, पर वो दूसरे के सुख का जो विचार करता है वो वैष्णव है, शिला प्रभुपाद। पर हम सबके अंदर में कहीं ना कहीं, तो जब भी हम देखते हैं जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दिख जाती है या किसी व्यक्ति को ऐसे लगता है कि मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो वो चौकन्ना हो जाता है, वो बड़ा ही प्रयास करने लगता है। क्यों भाई आप आजकल मंदिर नहीं आते हो, जप वप हो रहा है कि नहीं? अरे प्रभु जी क्या बताएं, अभी थोड़ा मुसीबत है, बहुत काम है, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, कॉम्पिटिशन का जमाना है। ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सोचते हैं कि भगवान की सहायता के बगैर, भगवान की कृपा के बगैर, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने प्रयास से, अपने ज्ञान से और अपने धन से या अपनी शक्ति से या अपने किसी कार्य से या अपने रिश्ते संबंधी से वो बच जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा और वो बचा रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं। देखिए हॉस्पिटल सामने है, मृत्यु जिनके निकट है वो देखिए कैसे करते हैं, हा 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 करते हैं। शरीर में नौ द्वार हैं, उन नौ द्वार में नलियां लगी रहती हैं। शरीर में नौ द्वार है, जो वेंटिलेटर पे होते हैं, आईसीयू में होते हैं, नौ द्वार में नलियां लगी रहती हैं। और खाना पीना कुछ नहीं जा रहा है, केवल केमिकल जा रहा है, इंजेक्शन जा रहा है, दवाइयां जा रही हैं। तब भी और जब भी मौका मिलता है डॉक्टरों से गिड़गिड़ाते हैं, डॉक्टर साहब मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए पर मेरे प्राण बचाइए। ये नहीं कहते डॉक्टर साहब हटाओ ये सब नलियां, मुझे भगवान का नाम लेने दीजिए, आपके अस्पताल में 24 घंटा कीर्तन बज रहा है, प्रसाद लेके आ रहे हैं, वो स्पिरिचुअल केयर के माता जी या प्रभु जी कुछ भागवत पाठ करने आते हैं, ये सब क्या है, जिज्ञासा नहीं करते हैं। कई लोग करके भक्त भी बन जाते हैं, पर जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं वो नहीं सोचते हैं, बोले ये हरे राम हरे कृष्ण का अस्पताल है इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। अपने क्या, अपना अच्छा हो, पैसा दो, निकल चलो, बिल पे करो, अपने घर जाओ, अपना काम करो, बीमार थे दवाइयां ली ठीक हो गए तो अपने निकल जाते हैं वो। अरे भगवान का नाम अपने तक आया, आप स्पिरिट आप आईसीयू में पड़े हैं, आप बिल्कुल अर्धमूर्छित अवस्था में, आप ऐसे से करते हैं, देखिए आप जाकर उसको कुछ भानी नहीं हो क्या कर रहा है, दिन है या रात्रि है या उसको दवाई दी जा रही है, उसको कुछ भान ही नहीं है, और आपके पास में यह भागवतम पाठ पढ़ा जा रहा है। और फिर कभी लोगों से मिलते पूछते हैं, कई बार लोगों से पूछते हैं आप मंदिर आइए ना, मंदिर क्यों नहीं आते हैं, तो क्या जवाब देते पता है, उसका हुक्म होगा तब आएंगे अगले। मतलब वो वैकुंठ से नीचे आए और आपका हाथ पकड़े और आपको कहें मेरा हुक्म है जा मंदिर जा, तब वो आएगा। मतलब भगवान हुक्म करें तो कैसे करें, इस तरह आकाशवाणी करें, ओ मिस्टर रामदास श्यामदास हरिदास प्रेमदास जो भी उसको कहें, ए भाई मेरा मंदिर क्यों नहीं जाता, इतना बड़ा हो गया अभी 20 साल 25 साल 30 साल 40 45 50 क्यों नहीं जाता, मंदिर जा मेरा हुक्म है। तब भी वो सोचेगा कोई हरे कृष्ण वाले का कोई पाखंड है, कहीं स्पीकर सिस्टम लग दिया होगा, साउंड सिस्टम, और वो बोलता होगा आकाश में से, तब भी वो यही सोचेगा क्योंकि वो असुर है। है कि नहीं, व्यक्ति के इतने निकट, वसुदेव जी देखिए धीरज तत्र न मोहयति ददामि, उनके पास बुद्धि है तो सोच रहे पहले इस संकट से कैसे निकला जाए। हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई संकट आ सकता है, आते होंगे, आते रहेंगे भविष्य में, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम केवल उन संकटों पर फोकस करें, हमें यह सोचना चाहिए सदैव हमें भगवान के आश्रित रहना चाहिए। सोचना चाहिए मेरे भाग्य में क्या है। आप देखिए कभी किसी कर्मकांडी पंडितों से मिलिए तो वो भी ये कहेंगे, जब किसी पर बरोबर साढ़ा सती की पनौती लगती है ना लोहे के पाए पर, जो भी है उसको बोल दो एक डेढ़ घंटे बाद और बंद कर दो फोन। तो जब लोहे के पाए पर जब साढ़े सती आती है ना तो उसका बिजनेस लॉस हो जाता है, बीमार रहता है, सब सब खत्म, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो पंडित लोग ज्योतिष लोग भी कहते हैं अभी आप शांत रहिए, क्योंकि सोने में हाथ डालते ही मिट्टी बन जाती है। पहले मिट्टी में हाथ डालता था सोना निकलता था, अब सोने में हाथ डालते मिट्टी बन जाती है। ऐसी होती है साढ़े सती की शनि की पनौती, जिस पे से आई होगी पता होगा, और नहीं आए तो प्रार्थना कीजिए कि ऐसा हाल कभी ना आए। एक बार शिव जी के ऊपर साढ़े सती आने वाली थी तो शनि महाराज ने कहा महाराज महादेव जी सावधान, अब मेरा समय आ गया आपके पास आने के लिए। शिव जी ने कहा तू क्या बिगाड़ेगा मेरा, तुझे पता नहीं मैंने कामदेव को भी भस्म कर लिया है। बोले महाराज मेरा कर्तव्य भगवान का आदेश है, यही विधान है प्रकृति का, आप संभालिएगा। बोले शिव जी ने कहा ठीक है आप आ तो सही मैं बताता हूं तुम्हें। तो शिव जी ने क्या सोचा, बोले जब ये सब तो देवताओं के ऊपर और मनुष्यों के ऊपर लागू होता है ना, पशु पे क्या लागू होता है साढ़े सती। तो शिव जी ने पशु योनि लेकर साढ़े सात साल जंगल में घूमते रहे, भटकते रहे, और फिर साढ़े सात साल गुजरने के बाद मुस्कुराने लगे शनि से, कहने क्यों अब मजा आई, क्या बिगाड़ लिया तूने। बोले महाराज ये कम था जो आप महादेव से पशु बन गए, ये कम था क्या जो आप महादेव देवादिदेव महादेव से पशु बन के जंगल में वन वन भटके, वो कम था क्या। तो मुसीबतें संकट तो आता रहेगा, परंतु दैव का भी थोड़ा विचार करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक विवेक बुद्धिपूर्वक दैव का भी विचार करना चाहिए कि केवल मैं अपने बल से अपने ज्ञान से अपनी संपत्ति से इस संकट को निवारूं, और नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें सीखना चाहिए इतिहास से, भागवत से हमें सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में गलतियां सब करते हैं, पाप सब करते हैं, अपराध सब कोई करते हैं, और जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं पर निभाते नहीं हैं। विवाह करते हैं, माता पिता बनते हैं, गुरु बनते हैं, राजा बनते हैं। भागवत कहता है पिता न सस्यात् गुरु न सस्यात् राजा न सस्यात्। अब राजा मत बनो, पिता मत बनो, गुरु मत बनो, किसी स्त्री के पति मत बनो जब तक कि आप उसको भगवत धाम ले जाने का प्रशिक्षण नहीं दे सको। अब कितने लोगों ने यह सोच के शादी की कि मैं अपनी पत्नी को भक्त बनाऊंगा, अपने बच्चों को भक्त बनाऊंगा, उसके बाद ही मैं संतान उत्पन्न करूंगा, या मैं गुरु बन जाऊं तो अपने सारे शिष्यों को भगवत धाम भेजूं। कोई नहीं सोचता है, लेकिन जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं पर निभाते नहीं है। कई बार कई लोग आके शिकायत करते हैं प्रभु जी हमारे बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, हम लोग हरे कृष्णा मंदिर आते हैं, हर रविवार आते हैं, एकादशी करते हैं नियमों का, पर आपने जीवन आपने बच्चे तो पैदा किए, विवाह किया, संतानें उत्पन्न की, वो बच्चे 10 साल 20 साल 15 साल के हो गए, फिर हरे कृष्ण में आए, आपने 10 20 सत्र सुने, भागवतम क्लास सुना, भक्तों को देखा, आपको अच्छा लगा, आपको कुछ लाभ भी हुआ शायद जप करने से या कीर्तन में आने से, तो आपने भक्ति को स्वीकार किया और फिर घर में अनुशासन लाद दिया, आज से प्याज लहसुन बंद, चाय कॉफी बंद, मांसाहार बंद। अब बच्चे जन्म से या माँ के गर्भ से वो करते आ रहे हैं और आप बोलते छोड़ दो, तो घर में कलह होता है, छोड़ते नहीं है। कभी बच्चे यहाँ आ जाते हैं IYF में यूथ फेस्टिवल में तो माता पिता स्वीकारते नहीं है, है ना, ऐसा भी होता है। तो कभी कभी बच्चे कहते हैं प्रभु जी हमारे पिताजी राक्षस जैसे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, जैसे वसुदेव जी यहां निभाते हैं, एक शिक्षा हमें यह लेना चाहिए। उसका प्रशिक्षण लेने के बाद ही उस जिम्मेदारी को स्वीकारना चाहिए। गलतियां अपराध सबको ही करते हैं, मृत्यु को निकट देखकर हर कोई डर जाता है, लेकिन यदि हमें प्रशिक्षण होगा, तालीम होगी, तो हम बौखलाएंगे नहीं, हम घबरा नहीं जाएंगे। लेकिन तालीम नहीं होगी तो हम डर जाएंगे। हम लोग सोचते ही नहीं कि हमारे भाग्य में क्या है। अब देखिए, जो कोई कहता है ना कि हम भगवान को बुलाएंगे, भगवान का बुलावा होगा, हुक्म होगा, तब हम आएंगे, या ऊपर वाले की इच्छा होगी तब हम जब शुरू करेंगे, देखिए इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दे दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दे दिया है, विशेष करके हम भारतीय लोगों के लिए, विशेष करके हम भारतीय लोगों के लिए और सारे विश्व के लोगों के लिए हमें जवाब दे दिया है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। क्या कहा है? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले जार, भारत भूमि में जन्म हुआ है, वो भी मनुष्य जन्म हुआ है। फिर ये नहीं कहा हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन ईसाई, ये सब नहीं कहा, उसको विवेक बुद्धि का उपयोग करना है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी। अगर आपका भारत भूमि में मनुष्य जन्म हुआ है तो उसको सार्थक करो। सोचो अपने विषय में, मैं कौन हूं, क्यों मैं दुख भोग रहा हूं, कहां मुझे जाना है, ये दुखों का अंत कैसे होगा, इस संसार सागर से मैं कैसे, भव सागर कैसे पार करूंगा, इसको सोच करके जो आपको रास्ता मिले उस प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए, ताकि हमारा जन्म सार्थक होगा। और जब हमारा जन्म सार्थक होने लगे तो कर पर उपकार है ना। और इस वाणी को समझाने के लिए भगवान ने हमें शास्त्र दिए, शास्त्र को समझाने के लिए हमें आचार्य भेजे, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क आचार्य, माधवाचार्य, शिला प्रभुपाद, वर्तमान आचार्य वृंद, और उन वर्तमान आचार्य वृंद के मार्गदर्शन में नित्य ऐसे भागवत की शिक्षाएं, और कैसे हुकुम करे आपको, इस पर भी हमारे हरे कृष्ण के भक्त लोग हरिनाम कीर्तन निकालते हैं, नगर संकीर्तन, नगर संकीर्तन में जाके कीर्तन करते हैं, लोगों को निमंत्रण देते हैं कि रविवार की शिक्षाओं में, सत्रों में आइए, उत्सवों में आइए। तो भगवान के प्रतिनिधि, इसलिए तो हमें वैष्णव कहते हैं ना, विष्णु का जो जन है वो वैष्णव है, तो इसलिए तो वैष्णव जन जा जाकर विष्णु का संदेशा देते हैं। अब कैसे हुक्म करें आपको, पर हमारी बुद्धि में तो आसुरी भाव पड़ा है, हम तो जाएंगे ही नहीं, जब कभी संकट आएगा या जन्मदिन आएगा या शादी बारात की बात आएगी तो जाएंगे, वो थोड़े थोड़े सुकृतिमान है, और कोई तो आते ही नहीं आसुरी। तो दैव के विषय में सोचते ही नहीं कि दैव से मेरा कुछ भी हो सकता है तो मैं क्यों घबराऊं, इसका रास्ता नहीं। देखिए मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि मैं तीन चार ट्रैक पे बात कर रहा हूं, कभी ये विषय को छू रहा हूं, कभी ये विषय को छू रहा हूं, कभी ये विषय को छू रहा हूं, लेकिन बुद्धि सजाग रखनी होगी। कभी इस पॉइंट पे हाथ रखता हूं, कभी इस पे, कभी इस पे वापस, फिर उस पे जाता हूं, फिर वापस उधर चला जाता हूं। ये कूद फांद नहीं है बंदर की तरह, ये भागवतम ऐसे ही पढ़ाया जाता है। भागवतम भी आप ग्रंथ खोलोगे तो चार चार पांच पांच छह छह ट्रैक पे कहानियां चलती है, कथाएं आप देखेंगे तो पांच छह ट्रैक पे भागवतम चलता है, कभी कभी सात ट्रैक पे चला जाता है। वो जो ऑर्गन बजाने वाले होते हैं सिंथेसाइजर, वो भी तो सात सुरों को छेड़ते हैं ना एक साथ, कभी सा बजता है तो साई थोड़ी बजता है, कभी सा से नी, नी से ध, ध से प, प से ग, ग से रे, लेकिन सुर की तारबद्धता लयता तो वही होती है कि व्यक्ति को समझ में आए। तो सार समझाने का प्रयास करूंगा, ट्रैक कितने भी चलने दीजिए, सजाग रहना है। इसलिए तो अभी हम देखते हैं जहां जिम्मेदारियों की बात होती है, जहां पर बुद्धि की बात होती है, जहां पर आसुरी भाव की बात होती है, जहां से अपने रक्षा की बात होती है, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने तीन चार ट्रैक को ओपन कर दिया ऐसे है ना, कि जिम्मेदारी की बात है, घबराना नहीं है विकट स्थिति में, है ना, बताया था ना, तो उसको एक एक को बात को स्पर्श करूंगा, कभी यहां से कभी यहां से, मृदंग दोनों बाजू से बचता है ना। तो इसलिए देखिए, गलतियां सब करते हैं, अपराध सब करते हैं, मगर व्यक्ति को सुर होना चाहिए, असुर नहीं। जैसे इंद्र ने कितना बड़ा घोर अपराध किया कि संवर्तक नाम के बादलों को आदेश कर दिया कि जाओ सारे ब्रजवासियों को खत्म कर दो। ये संवर्तक बादल तब वर्षा करते हैं जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है और सृष्टि में प्रलय करना होता है, तब संवर्तक नाम के बादल आते हैं और वो मूसलाधार बारिश करते हैं। हमारे मुंबई में हर जून के स्टार्टिंग में जब वर्षा होती है और ट्रेन बस सब बंद हो जाता है तो लोग कहते हैं मूसलाधार वर्षा हुई। मूसलाधार वर्षा नहीं है, वो बहुत भारी वर्षा कह सकते हैं पर मूसलाधार वर्षा नहीं। मूसलाधार वर्षा आएगी वो संवर्तक बादल ही गिरा सकते हैं। तो मूसलाधार वर्षा जो है वो प्रलय के समय आती है। मूसल समझते हैं धान कूटने का, जिस उखल से माँ यशोदा ने कन्हैया को बांधा तो उसमें धान कूटते, उस धान कूटने का जो डंडा होता है करीब करीब 5 फीट का होता है, 5 फीट लंबा और इतना चौड़ा होता है करीब करीब। तो स्त्रियां जो ऐसे दो हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे धान कूटती हैं तो उसे मूसल कहते हैं। तो जब वो एक एक बूंद ऐसे गिरती हैं, एक बूंद वो मूसल के समान, मूसल के साइज की जब गिरती है उसे कहते हैं मूसलाधार वर्षा। हम लोग यूं ही बोल देते हैं मूसलाधार वर्षा है, मतलब वो वर्षा की धाराएं कैसी है, मूसल के समान। ये मुसलमान धर्म का प्रतीक भी मूसल है, वो फिर कभी बताऊंगा, इसलिए उसका नाम मुसलमान है। उसके धर्म का प्रतीक है मूसल। तो इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा की कि सारे ब्रजवासियों को खत्म कर दो, क्योंकि मेरा परंपरा से चलाया हुआ इंद्र यज्ञ बंद करा दिया। ब्रज की गायों को, ब्रज के ब्राह्मणों को, जमुना को, ब्रज धाम को, सबको नष्ट कर दो। कितना बड़ा अपराध है, कितना घोर अपराध है, उसका बचने का कोई चांस नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और उनको वो भी याद आ गया कि कुछ दिन पहले ही ब्रह्मा जी ने केवल ठाकुर जी की परीक्षा की कि ये वही पर ब्रह्म है क्या। तो ब्रह्मा जी ने अपने हंस वाहन से देखा कि मधु मंगल हंस रहा है और अपना छाछ पी रहा है और भगवान को ठाकुर जी को दे नहीं रहा है और दोनों में छीना झपटी हो रही है, ऐसे ऐसे मुझे दे दे मुझे दे, नहीं 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 नहीं, ऐसे हंस रहे, सारे हंस रहे हैं और जल्दी जल्दी पी रहे हैं। और जो छाछ है वो ऐसे पूरे आधी मुंह में जा रही है, पेट में आधा गिर रहा है। तो कन्हैया ने सोचा ये कहीं खत्म ना हो जाए तो यहां से चाटने लगे मधुमंगल के शरीर से। तो भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी, ये परब्रह्म, ये मेरे उत्पत्ति करता, इनकी नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये ग्वाला की छाती से झूठा उसके मुंह से। मैंने तो सुना है परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र है ये, तो ये तो झूठा भी रहा है। तो बौखला गए, घबरा गए। फिर भी ठाकुर जी ने, गिरिधारी ने उनसे बात तक नहीं की। जब पता चल गया तो बात भी नहीं की उनकी और देखा भी नहीं, रुष्ट हो गए। तो ब्रह्मा जी चुपचाप लौट गए, बोले डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, बॉस इज वेरी मच अनहैप्पी टू मी, बहुत ही नाराज है, इनको भी छेड़ना ही उचित नहीं है, यूं भ्रुकुटी टेढ़ी करके देखेंगे मेरे समस्त ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा। चुपचाप चले गए स्तुति करके। मगर यहां तो कितना लाखों कोटी गुना भारी अपराध हुआ है कि सारे व्रजवासियों को खत्म करो, उन्हें तो बछड़े और ग्वालों को चुरा के केवल योग निद्रा में अपने धाम में सुला दिया था। ब्रह्म मोहन लीला आप सब जानते ही हैं, पढ़ा होगा सुना होगा। इनका अपराध कुछ भी नहीं है इनके सामने, इंद्र महाराज के सामने, लेकिन फिर भी भगवान ने उनके सामने बात भी की, उनकी ओर भी देखा और उनसे बात भी की और हंसते हंसते उनको, इंद्र को विदा भी किया। ये कैसा उल्टा हो सकता है, इसका कारण क्या है। तो हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं, आचार्य चरण श्रीपाद वल्लभ आचार्य इस प्रसंग को इस तरह से बताते हैं कि चूंकि इंद्र बुद्धिमान था, वो सूर है ना, वामन का बड़ा भाई है, उपेंद्र का बड़ा भाई है, सदैव भगवान की संगति में रहता है, इसकी बुद्धि ठीक है, कभी बिगड़ गई लेकिन फिर भी ठीक रहती है। तो उसने क्या किया, अपने गुरु की शरण में चले गए, ब्राह्मण की शरण में, बृहस्पति महाराज उपाय निकालो। और ब्राह्मण भी बड़े चतुर और गुरु की यहां जिम्मेदारी निभाते हैं, है ना, गुरु न सस्या, गुरु की जिम्मेदारी यहां निभाते हैं। कहे ठीक है, जो मैं कहता हूं वही चुपचाप करना, आगे कुछ नहीं अभी करना। बोले मैं और स्वर्ग की उत्तम सुरभि गाय को लेके आगे चलो, तुम्हारा सब कल्याण होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र पीछे पीछे चले और ब्राह्मण देवता जो है बृहस्पति महाराज आगे उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति करते हुए जाते हैं। और विष्णु स्तुति प्रिय है, विष्णु को यदि प्रसन्न करना है तो स्तुति करो, विष्णु स्तुति प्रिय है। दुर्गा जी को अर्चन प्रिय है, शिव जी को अभिषेक प्रिय है, सूर्य को नमस्कार प्रिय है, जिनको जो प्रिय है वो करना चाहिए। तो भगवान विष्णु को स्तुति प्रिय है, स्तुति प्रिय है, तो उनको जो प्रिय लगता है। आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम सेवनम भक्ति रुत्तमा, रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम सेवनम भक्ति रुत्तमा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम सेवनम भक्ति रुत्तमा। उनको कृष्ण को जो प्रिय है, तो ये उत्तम स्तुति के द्वारा बृहस्पति आगे चले और स्वर्ग की सर्वोत्तम सुरभि गाय को लेकर आगे चले। और जब कृष्ण ने सुरभि गाय और ब्राह्मण को देखा तो कृष्ण का सारा क्रोध जो है शांत हो गया और कृष्ण के हृदय का भाव परिवर्तन हो गया। क्या भाव आया, कि ब्रह्मा जी ने मुझे मेरे ग्वाल बालों से, व्रजवासियों से और मेरी गैया बछड़ों से वियोग कराया और इंद्र के दुष्प्रयास से मेरा संयोग कराया, मेरा मिलन करा दिया इंद्र ने, अच्छा किया इंद्र ने। क्योंकि हर व्रजवासी सोचते थे, अष्ट प्रहर लीलाएं होती है ना कृष्ण की, तो हर व्रजवासी सोचते सुबह से भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोहे पठायो। तो सुबह से गैया चराने गए थे, शाम को घर आए तो बोले चार प्रहर तो ऐसे ही बीत गए, रात्रि के दो प्रहर रासलीला में जाते हैं, तो यहां ब्रज की जो बड़े माता के समान गोपियां हैं या ग्वाल बाल हैं उनका वियोग हो गया रात्रि में। तो हर ब्रजवासी ये सोचते हैं कि कृष्ण से सतत निरंतर मिलन कैसे हो, तो इंद्र के दुष्प्रयास से हुआ, ये भाव कृष्ण ने ग्रहण किया। तो ब्राह्मण ने अपनी, एक गुरु ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि उनकी रक्षा की और कृष्ण ने उनकी ओर भी देखा, कृष्ण ने। और इसी प्रसंग को याद रखकर कुंती महारानी कृष्ण को जब प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करती है, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, है श्रीमद् भागवत के इसी प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय में। कुंती महारानी जब उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित की रक्षा करने के बाद जब कृष्ण द्वारिका की ओर प्रयाण करने निकलते हैं, जब रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं, तब कुंती महारानी प्रार्थना इस तरह से रक्षा करना, राजा को भी रक्षा करनी चाहिए अपनी प्रजा की, जैसे यहां पर वसुदेव जी कर रहे हैं, राजा को भी रक्षा करनी चाहिए अपनी प्रजा की। इसी दशम स्कंद में आगे आकर के आएगी चतुर्थ भाग में, कि जब एक बार ब्राह्मण के साथ साथ संतान उत्पन्न होते थे और अदृश्य हो जाते थे द्वारिका में, और वो ब्राह्मण भरपूर गालियां दे रहा था भगवान को और सबको, सारे पृथ्वी के क्षत्रिय राजाओं को, तब अर्जुन ने कहा सावधान, आप सभी क्षत्रियों को नपुंसक या नराधम या अधर्मी नहीं कह सकते हैं, अभी ये गांडीवधारी अर्जुन उपस्थित हैं, नारायण का नर, नारायण का ये सेवक हाजिर है, क्या हुआ तुम्हारे बच्चों, मैं रक्षा करूंगा और यदि नहीं कर पाया तो मैं अग्नि स्नान करूंगा। और वो रक्षा नहीं कर पाए, फिर भगवान लेके गए उनको खारोदक्षाई विष्णु तक, महाविष्णु नारायण के पास ले गए, पर भगवान ने उन ब्राह्मण बालकों की रक्षा की। ऐसे ही एक समय में प्रभु श्री राम के राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र का मृत्यु हो गया और वह आके बहुत सब अनाप शनाप बोलने लगा कि ठीक नहीं है, अधर्म है, वैसे तो रामायण में लिखा है, भागवतम में लिखा है, नवम स्कंद में कि न आधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमा मृत्युम्श्चम अनिच्छताम नासीत राम राज्य अन्य अधोक्षजे, है ना। अभी रामनवमी आ रही है कि राम राज्य में सब कुछ है, सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, परंतु नौ चीज कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है राम राज्य में। तो क्या नौ चीजें नहीं होती है राम राज्य में? न आधी व्याधि जरा ग्लानी दुख शोक भय क्लमा, और जब तक इच्छा ना हो तब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु भी नहीं आती। मृत्युम्श्चम अनिच्छताम नासिक राम राज्यन्य अधोक्ष जे। और फिर ब्राह्मण के पुत्र की, और वो तो कलयुग में होता है कि पिता के कंधे पर पुत्र की या दादा के कंधे पर पौत्र की अर्थी जाती है, ये तो कलयुग है, ये तो सतयुग के बाद में तुरंत त्रेता युग कैसे जा सकता है? ढूंढो, तपास करो क्या धर्म है। रामचंद्र जी ने चारों ओर सेनाएं भेज दी कि कहां इस पृथ्वी पर पाप हो रहा है या धर्म हो रहा है। ब्राह्मण पुत्र कैसे मरा? उत्तरकांड में आती है ये कथा रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, कैसे कैसे ये हो गया। सब ओर से सब सिपाही वापस से बोले, कहीं प्रभु आपके राज्य में कहीं अधर्म का नामो निशान नहीं। वो ब्राह्मण फिर क्रोधित हो गया, फिर रोने लगा, शोक करने लगा। प्रभु राम ने फिर और विशेष दलों को भेजा, तब जाके कहीं से पता चला कि हिमालय के किसी एक कोने में एक शूद्र व्यक्ति नीचे अग्नि जलाकर पेड़ की टहनी पर, पेड़ की डाल के ऊपर उल्टा लटक के नीचे अग्नि जलाकर घोर तपस्या कर रहा है, एक शूद्र व्यक्ति। किसी भी युग में शूद्रों के लिए तपस्या का विधान नहीं है। शूद्र भक्ति कर सकता है, शूद्र हरिनाम कर सकता है। यदि वो वैष्णव बन जाता है तो वो होम हवन यज्ञ यागादि कर सकता है, परंतु तपस्या नहीं कर सकता। और इसलिए प्रभुपाद जी ने तपस्या की व्याख्या भी बहुत सरल की है कि हरे कृष्ण के भक्त चार नियमों का पालन करें, 16 माला जप करें और एकादशी जन्माष्टमी आदि व्रतों में उपवास करें, यही तपस्या है। यह शूद्र भी कर सकता है, परंतु उस युग में शूद्र की तपस्या का विधान नहीं था। जैसे प्रभु श्री राम को पता चला, वो स्वयं घोड़े पर बैठकर गए और शूद्र का तलवार से गर्दन काट दी, उनका वध कर दिया। कि एक प्रजा, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का एक व्यक्ति भी यदि पीड़ित हो या प्रजा का एक व्यक्ति भी यदि पाप करे तो उस पाप का 6% हिस्सा उस राजा को या मुख्यमंत्री को या नगर सेवक को लग जाता है। और यहां तो आजकल जहां देखो तहां सुबह उठते ही सब नगर सेवक और मंत्रियों के और भरपूर लोगों के चेहरे देखने, वाढ़ 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 दी उषा छा हार्दिक अभिनंदन, और सब चिटनीस झाड़िया बदल अभिनंदन, और फलाना झाड़िया बदल अभिनंदन, सभापति निमरुनुरुक बदलनिया अभिनंदन, क्या क्या लिखते हैं। वो जानते नहीं है 6-6% लग रहा है। अभी मीरा भाई अंदर में जितने लोग हैं उसका 6-6% पाप सबको लग रहा है। नगर सेवक है तो सेवक करो और लोगों को धर्म के मार्ग में लगाओ। ये राजनेता कभी सच नहीं बोलते, एक बात बता देता हूं इस विषय से हटके, पर जीवन में एक ही बार सच बोलते हैं और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई राजनेता पार्टी के बोर्ड लग जाते हैं गली के चौराहे पे, नुक्कड़ पे, चौटे पर, दुखद निधन जानिया बदल दुख, वो लिखते हैं फलाना फलाना जो दुखद निधन जाला, वो बिल्कुल सच लिखते हैं। क्योंकि बगैर कृष्ण नाम का जो मर गया तो दुखद निधन ही हुआ ना, पशु बनेगा, वो सच लिखता है बंदा। तो इस प्रकार से गुरु ने रक्षा की, अपनी जिम्मेदारी को निभाया, राजा ने रक्षा की। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नियों को वो उचित शिक्षा दे। कितने कितने उदाहरण मिलते हैं भागवत में। श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि आप कृष्ण भक्ति करो, नहीं समझे त्याग दिया उनको। कितने ऐसे उदाहरण हैं। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, अपने आश्रित लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हम चैतन्य चरितामृत की कथा को यदि स्मरण करें तो जगाई मधाई के प्रसंग में हम देखें तो जब माधाई ने नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर शराब का भरा हुआ मटका दे मारा और उनको खून आने लगा, चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला वो तुरंत सुदर्शन का आह्वान करके वध करने लगे। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, आप वध मत कीजिए, है ना, आप वध मत कीजिए, इसकी आसुरी वृत्ति का वध कीजिए। तो शुरू में हमने कहा था कि हमें इस प्रसंग से भगवान का और भक्तों का चरित्र समझ में आता है। कहा था शुरू में, याद है किसी को, हमने 3-4 पॉइंट कहे थे कि ये भागवतम की शिक्षा क्या देती है, किसी को याद नहीं, किसको याद है, कि भगवान और भक्त का चरित्र भी आएगा इसमें। देखिए, जब जब भगवान के भक्तों के पास मृत्यु निकट होता है, भगवान के भक्तों के पास, तो भगवान क्या करते हैं, तत्काल उसका वध कर देते हैं। ये भगवान की स्टाइल है। और भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, और वो प्रार्थना भी नहीं करते हैं कि मुझे इस मृत्यु से बचाओ, वो केवल भगवान के चरण कमलों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। भगवान तुरंत वध कर देते हैं, है ना। सुदर्शन चक्र को बुला लिया, राम ने रावण को मार दिया, भगवान ने हर एक असुरों को मार दिया, वो गजेंद्र को मगर ने पकड़ा उसको मार दिया। मगर भगवान का भक्त क्या करता है, जैसे प्रहलाद महाराज अपने पिता के ही अनुचर उनपे अनेक प्रकार के कष्ट दे रहे थे, उनको मारने का प्रयास कर रहे थे, परंतु प्रहलाद महाराज ने कभी नहीं कहा कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, कहा। अम्बरीश महाराज ने कहा कि दुर्वासा मुनि ने जो ये कृत्य उत्पन्न किया है उससे मेरी रक्षा कीजिए, कहा। उन्होंने कहा जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे स्वीकार है, वो मैं कर लूंगा, अब मैं ये करूं कि मैं भगवान के चरण कमलों के ऊपर मेरे ध्यान को केंद्रित करूं। तो उन्होंने तुरंत भगवान का स्मरण किया, अपने आप भगवान का सुदर्शन आया अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए। और दुर्वासा मुनि की रक्षा के लिए कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई देवता नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु ने भी मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता आपकी रक्षा मेरे सुदर्शन से। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, सबने इनकार कर दिया, एकदम साफ मना कर दिया, बोले आप जाइए नहीं तो हम अपने लोक के समेत नष्ट हो जाएंगे। तो ये भगवान का चरित्र ऐसा है, भगवान अपने भक्तों पर संकट आता है असुर को मार देते हैं, मगर भक्त का चरित्र कैसा है, धीरज तत्र न मोहयति, भगवान के भक्त जो हैं वो विवेक बुद्धि से विचार करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इस समय, क्योंकि भगवान ने उनको बुद्धि दी रहती है, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, मेरी शरण में कैसे आना चाहिए या मेरी चरण का स्मरण कैसे बनाए रखना चाहिए, ये बुद्धि देते हैं। शेयर मार्केट में कौन सा भाव चल रहा है उस कंपनी का शेयर खरीद लूं, इसका बुद्धि नहीं देते हैं, इसका बुद्धि हमें माया देती है कि हमें लाभ होने वाले शेयर खरीद लें, हमें लाभ होगा, लाभ होने के बाद हम अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति करेंगे, ये बुद्धि माया देती है। तो इसलिए यहां पर वसुदेव जी ये सोचते हैं कि न जाने दैव योग से क्या हो सकता है। तो हम लोगों को भी ये विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी स्थिति है, जो मेरे भाग्य में है, उसको स्वीकार करेंगे और हम नम्रता से अपने प्रभु का स्मरण करें। तो दैव को स्वीकार लेना चाहिए, उसके सामने लड़ना नहीं चाहिए, कहें क्योंकि कृष्ण ने ही भगवद गीता में कहा है, दैवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये दैवी गुणों वाली जो मेरी प्रकृति है, ये जो दैवी विधान है, उसको कोई अपने बल से लांग ही नहीं सकता, मम माया दुरत्यया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। परंतु दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते, परंतु जो मेरी शरण में आ जाता है माया में ताम तरंती ते, वो माया को पार कर जाता है। और वो कैसे पार कर जाता है, बड़ी आसानी के साथ उपनिषदों में भागवतम में उसको ऐसे बताया जाता है कि एक बछड़े के खुर से वर्षा के दिनों में मिट्टी के रास्ते में, वर्षा ऋतु के दिनों में मिट्टी के रास्ते में बछड़े की खुर से, बछड़े होते हैं ना छोटे छोटे गाय के, उसकी खुर कितनी होती है, इतनी इतनी, बोले उस खुर से मिट्टी के रास्ते में गिरे हुए खड्डे में जो जल भर जाता है उसको एक छोटा बालक 2-3 साल का बालक भी आंख मूंद के पार कर सकता है, वैसे वो पार कर जाता है। परंतु जो भगवान की शरण में जाता है वो ना कि रॉकेट लेके चंद्रमा पे और मंगल पे जाने का प्रयास करता है। वो जब 1966 में अपोलो 11 के द्वारा ऑल्विन एड्रिन नील आर्मस्ट्रांग ये लोग सब ऐसी घोषणा कर दी कि हम लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, प्रभुपाद जी हंसने लगे उस समय, अपने भक्तों से कहें ये बकवास कर रहे हैं, व्यक्ति इस तरह से कभी चंद्रमा पे पहुंच ही नहीं सकता, ये असुर लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, कभी व्यक्ति चंद्रमा पे पहुंचा ही नहीं है, मानव ने कभी चंद्रमा पे पैर रखा ही नहीं है। अरे विश्वामित्र ऋषि मुनि ने यहां से दूसरी मंजिल पर भेजने का प्रयास किया त्रिशंकु को अपने तपोबल से, तो यहां से दूसरे मंजिल पर नहीं भेज सके। हम लोग बोलते ना ओम भूर्भुवस्वः, बोलते हैं कि नहीं, कितने लोग बोलते हैं, हाथ उठाइए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं, अच्छा आप सबकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई ब्राह्मण कुल में जन्मे आप लोग, सब उपनयन लिया है, जिस जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं उपनयन लिया है वही ये बोल सकते हैं। तो ये दूसरी मंजिल है केवल यहां से ओम भूर भुवस्व, वो त्रिशंकु को वहां दूसरी मंजिल तक भेजने के लिए कितनी झंझट हो गई, और भेज नहीं पाए, अंत में दूसरा बीच में स्वर्ग खड़ा करना पड़ा त्रिशंकु के लिए। तो चंद्रमा तो बहुत दूर है ना, तो इसलिए ये आसुरी विचार है, भगवान की शरण में नहीं जाते हैं कभी भी। वो इस तरह से उदाहरण दिया जाता है कि भगवान की शरण में जो जाएंगे वो माया के गड्ढे भवसागर कैसे हो जाएगा, बछड़े के खुर से बना हुआ गड्ढे के समान। और भी है, माया में तो तरंती ते कैसे हो जाएगा, तो आप सबने तिरुपति बालाजी के स्वरूप को देखा होगा, तिरुपति बालाजी देखा है, कितने लोगों ने देखा है बालाजी के दर्शन, स्वयं तिरुपति जाकर या कैलेंडर में फोटो में कहीं भी बालाजी के दर्शन कितने लोगों ने किया, आधे से ज्यादा लोगों ने तिरुपति बालाजी को देखा ही नहीं कभी, कैलेंडर में, फोटो में, टीवी में, कंप्यूटर में, तिरुपति नहीं गए अलग बात है, वहां तो देखने भी नहीं मिलेगा, दो सेकंड में बाजू, चार छह घंटा लाइन में खड़ा रहो, दो पांच सेकंड में बाजू हट जाओ कितने लोगों ने देखा है स्वरूप, हाथ उठाइए कहीं पर भी, वेरी गुड, कैसा स्वरूप है बालाजी, कैसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं बालाजी का स्वरूप कैसा है, अब पता ही नहीं है, बोले कुछ दिखता ही नहीं है, कपूर का तिलक है, आंख मूंदी हुई है, बड़ा सा मुकुट है, चेहरे से मुखारविंद से बड़ा मुकुट है दो गुना ये तो देखा है कि नहीं, बालाजी के मुखारविंद से दो गुना मुकुट है, और पूरा नाक तक ढक जाए, आंखों से कपाल से ऐसा ढक जाए पूरा, ऐसे एक कपूर का तिलक है, बीच में कुमकुम का तिलक है, और बोले पूरे शरीर पे इतने गहने हैं और एक इतना बड़ा फूलों का हार है और कुछ दिखता ही नहीं लेकिन ध्यान से देखेंगे तो बालाजी का जो दाहिना ऊपर हाथ है ना वो ऐसा है, स्कंद पुराण में वर्णन है उसका, बालाजी का ऊपर का हाथ ऐसा है, नीचे का हाथ दाहिना ऐसा है, बाया ऊपर का हाथ ऐसा है और बाया नीचे का हाथ ऐसे घुटने के पास ऐसा पकड़ा हुआ है, घुटने के पास ऐसा, तो उसका वर्णन है स्कंद पुराण में कि बालाजी क्या कहता है, बालाजी क्या कह रहे हैं, संसार के जीवों को बुला रहे हैं, हे जीव मेरी शरण में आ, हे जीव मेरी शरण में आ, मैं तुझे अभय दान देता हूं, मैं तुझे अभय दान देता हूं, अभय दान मतलब हर प्रकार से, हर कष्ट से, हर संकट से मैं तेरी रक्षा करूंगा, मेरी शरण में आ, मैं तुझे अभय दान देता हूं। और फिर कहते हैं मेरी शरण में आने से तेरा सब मंगल होगा, क्या होगा, तेरा सब मंगल होगा, मैं झोंक नहीं कर रहा हूं, ये लिखा है स्कंद पुराण। हम लोग कोई वस्तु सुंदर होती है, अच्छा अच्छा लगता है तो कैसे बोलते हैं, अच्छा लगता है, ऐसा थोड़ी बोलते, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, ऐसे ही कहते हैं ना। तो बालाजी कहते हैं हे जीव मेरी शरण में आ, तुझे अभय दान दूंगा, तेरा सब कुछ मंगल होगा, और ये जो भवसागर है ना, जो इतना विशाल, इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना गहरा, जो तू कोई सबमरीन या स्टीमर लेके भी पार नहीं कर सकेगा, वो तेरा जो भवसागर का जल है वो घुटने भर का रह जाएगा, जो तू आराम से पार कर जाएगा। ये तिरुपति बालाजी का स्वरूप का वर्णन है कि तेरा भवसागर का जल जो है वो घुटने भर का रह जाएगा। ऐसे, अब देखिएगा बायां हाथ नीचे का ऐसे पकड़ा हुआ है घुटने के पास। भगवान को क्या जरूरत है ऐसा घुटना पकड़ने की? अजान बाहू है तो क्या है, खड़े खड़े हाथ पहुंचते तो क्या घुटना पकड़ते रहने का? कोई कोई मुच्छड़ होता है तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, दाढ़ी मूंछ हो रहता है तो ऐसे है ना। वो आलाचुआ में, आलाचुआ अमेरिका का जो धरती का नर्क कहा है मालूम, धरती का नर्क, नर्क इस धरती पर नर्क है अमेरिका का एक सिटी आलाचुआ, जिसमें कभी एक एक बिंदी जितना दाढ़ी रखते हैं या कभी ऐसे दाढ़ी रखते हैं। तो जब उनको कहना होता है ना हु केयर्स, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तो वो कहता यो। आलाचुआ में इसका मतलब बहुत गंदा होता है यो। तो आजकल जवान लोग ऐसे बिना समझे रखते हैं, एक बूंदी, एक ऐसे कुछ तो ऐसे धार रखते हैं, ये सब आलाचुआ संस्कृति है। अमेरिका का एक सिटी है धरती का नर्क, जितने भी गंदी फैशन, गंदी बात, यो मैन, यो यो यो, ऐसे जो सब आता है ना, ये सब आलाचुआ से आता है। ये धरती का नर्क है, वो गंदी बातें, गंदी फैशन, गंदे MMS कंप्यूटर में सारी गंदी चीजें, वो सब आलाचुआ की देन है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, ऐसी जगह में नहीं जाना, भगवान की शरण में जाना। तो भगवान की शरण में जाने से भवसागर इतना रह जाएगा और भगवान हमें बुद्धि देंगे। यदि वसुदेव बोखला जाते तो क्या करते, नहीं 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 नहीं, ऐसे हाथ पकड़ते, छोड़ दो माफ करो, ऐसे नहीं किया उन्होंने, बुद्धि का उपयोग किया, तर्क वितर्क सोचे उन्होंने कि मैं कैसे बचाऊं, मेरी पत्नी है, मेरे आश्रित है, मैं उसकी रक्षा करूं, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दैव, मेरा भाग्य क्या कहता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे जब धीर बुद्धि से विचार करते तभी तो कोई बात, कोई रास्ता निकलता है, संभावना होती है। तो ये सब धीर भाव, ये बुद्धि कहां से आती है, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। और भगवान की शरण में नहीं जाने से माया या अपिहत ज्ञानम, या तो फिर भगवान की शरण में जाने से ददामि बुद्धि योगंता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस बात की चिंता चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं अपने शिक्षाष्टकम में, जो हमने शुरू किए थे, हुक्म होगा तो मंदिर में जाएंगे, हुक्म होगा तो जप करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं अपने शिक्षाष्टकम में, सब कुछ हुक्म कर दिया है, सब कुछ रेडीमेड दे दिया है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मेरे नाम में कोई विकार नहीं है। कृष्ण गोविंद मुकुंद मुरारी माधव दामोदर पद्मनाभ अच्युत केशव, बहुत सारे नाम हैं, हर नाम में मैंने अपनी समस्त शक्ति और ऐश्वर्य समर्पित कर दिया है, उसमें कोई विकार नहीं है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, उस पर भी कोई नियम और ये नीति नियम नहीं बनाया है कि शुक्रवार को ही लेना है, पूरब दिशा में ही बैठना है, लाल गुलाब देना है, लाल आसन पे ही बैठना है, खट्टा नहीं खाना है, तेल चढ़ाना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, न स्थान का कोई नीति नियम है, न काल का नीति नियम है। आप कहीं पर भी कभी भी कोई भी कार्य करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रभु नाम ले सकते हैं आप। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिश तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि, हे प्रभु इतनी सारी कृपा की तब भी, चैतन्य महाप्रभु दैव की बात करते, कैसे दैव, सुदैव नहीं, दुर्दैव, दुर्दैवम, फिर भी हमारा दुर्भाग्य तो देखिए प्रभु, दुर्दैवम ईदृशम इह जानी न अनुराग, फिर भी हमें आपके चरण कमलों में, आपके नाम में, आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में हमें अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए हम 16 माला जप पूरा करते हैं। I have finished my 16 rounds chanting of Hare Krishna Mahamantra. I finished. हमें जप करना है ताकि बुद्धि आए, हम किसी भी परिस्थिति में न बौखलाएं। हमें इतिहास से, भागवतम इतिहास है, इतिहास से, भागवतम से, इन चरित्र को पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, समझना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त कहते हैं, प्रभु जी हमारा 3 बार 4 बार भागवतम पूरा हो गया, पढ़ लिया हमने, लेकिन भागवत के लक्षण कुछ भी नहीं दिखाई दिए। भागवत पूरा पढ़ लिया 18 अध्याय का, कितने हजार श्लोक हैं? 18,000 श्लोक और 12 स्कंद, पर ग्रंथ तो 18 है ना, प्रभुपाद जी ने जो लिखे हैं ग्रंथ 18। 18,000 श्लोकों का भागवतम 3 बार 4 बार पढ़ लिया, पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया, पर भागवत नहीं बने, क्या भागवत पाठ किया? इसलिए हमें सदैव इन चरित्रों से सीखना चाहिए। 3 लाइन का तात्पर्य हो, 4 लाइन का हो, उसको एक एक शब्द को समझना चाहिए, गुरु के सन्निकट इसको समझना चाहिए। हाँ, तद्विधि परिपाते न परिप्रश्न न सेवया, गुरु की आचार्यों की वैष्णवों की सेवा करने से ही, सेवन न मुखे ही जीववादो स्वयं एव स्फुरत द, कि ज्ञान हमारे हृदय में उद्भासित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। 3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो या 1 बार पढ़ो, यदि अर्थ समझ में नहीं आता है तो समझना चाहिए हमारी कहीं ना कहीं भूल है, त्रुटि है, दोष है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? स्पष्ट लिखा है हरे कृष्ण। फिर भी यदि कोई दोष या त्रुटि रह गई हो तो प्लीज क्षमा कर दीजिए कृपा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या आज का कोई विषय समझ में ना आया हो, ऐसे लगा कि यहां से वहां, वहां से यहां, फिर यहां, फिर कोई बात समझ में ना आई हो, इस तरह से क्लास में केवल मंदिर में देता हूं, बाहर में, क्योंकि मंदिर में सब ट्रेंड लोग हैं ना, प्रशिक्षित हैं, प्रतिदिन भागवत सुनते हैं, तो उनकी बुद्धि ऐसी क्षमतावान होती है, समझ में आया सबको? 3-4 ट्रैक पे गया नहीं आया, सिंपल। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? एनी क्वेश्चन? ये मत सोचना कि मैं कहूंगा देखो समझ में नहीं आया, असुरी बुद्धि है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको तो बार बार समझना है, बार बार मनन करना है, बार बार सुनना है, बार बार बोलना है। मैं आपका प्रश्न, आपका आवाज मेरे तक आया नहीं, क्या बोला इन्होंने?
धोबी के बारे में बता रहे हैं, रामचंद्र जी धोबी को मारा
था, धोबी और धोबन। हाँ, वो शूद्र को मार दिया और धोबी को क्यों नहीं मारा है ना? हाँ, देखिए शूद्र ने धर्म का उल्लंघन किया, शूद्र ने धर्म का उल्लंघन किया एकदम से अपने मनमाने तरीके से, इसलिए उसको वहीं समाप्त कर दिया। और धोबी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि अगर धोबी को रामचंद्र जी मार देते हैं तो लोगों में दुर्भावना फैल जाती कि देखो रामचंद्र जी एक क्रूर राजा है, कोई सच नहीं बोल सकता है क्या इनके राज्य में? यद्यपि वो सच नहीं था क्योंकि सीता जी को स्वीकार किया था, सीता मैया को अग्नि परीक्षा के बाद, तो वो सोचते हैं अगर प्रजा का कोई मत है, यदि प्रजा का कोई मत है, प्रजा की कोई बात है तो उसको निराकरण करना चाहिए। और रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसी बात केवल वो धोबी जोर से बोला और रामचंद्र जी के गुप्तचरों ने सुन लिया, पर कई स्थानों पे ये बातें चर्चा हो रही थी। रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा था कि गली के कोने पर, चोरे चौटे पर, कई जगह जगह ऐसी बातें अलग अलग ग्रुप में हो रही थी, गुप्तचरों ने यह बताया। केवल एक अकेला पूरे इतने बड़े राज्य में धोबी ने कहा और ऐसे नहीं है, और उसने कुछ धर्म संगत बातें कही, धोबी ने कुछ धर्म संगत बातें कही। यद्यपि सीता जी को अग्नि परीक्षा करके लाया गया है, पर फिर भी जो धर्म के नियम है कि स्त्री भ्रष्ट हो गई तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसके अनुसंधान में वो धोबी ने वाणी निकाली और गुप्तचरों ने आके बता दी। पर गुप्तचरों ने यह भी कहा और रामचंद्र जी ने पुनः गुप्तचरों को भेजा कि जाइए, ये केवल ये अकेला ही बोला है, या लोक मत भी ऐसा हो रहा है, तो पता चला कि लोक मत भी ऐसे हो रहा है। तो सोचे स्वयं प्रभु इतना सुंदर राज्य कर रहे हैं, तिस पर भी भौतिक जगत के मानवों की परिस्थिति देखिए मन की, तो फिर भी रामचंद्र जी के विषय में कुछ कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए एक राजा, उत्तम राजा के कर्तव्य को उन्होंने दिखाने के लिए, उदाहरण स्थापित करने के लिए, उन्होंने अपनी अर्धांगना प्राण प्यारी और निर्दोष सीता मैया को त्याग दिया, उसको मारा नहीं। मारते तो लोगों में और बातें फैलती कि देखो यहां तो भाई कोई सच बोल ही नहीं सकता, यहां तो मार दिया जाता है सच बोलने, एक और गलत भाव फैल जाता लोकमानस में, लोकमानस में लोगों के दिमाग में और गलत बातें आ जाती। इसलिए रामचंद्र जी ने धोबी को नहीं मारा पर उस शूद्र को मार दिया, क्योंकि उसने किसी की परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं, अपने मनमाने तरीके से तपस्या शुरू कर दी, इसलिए उसको मार दिया कि ताकि थोड़ा सा भी बढ़ावा ना मिले किसी को। ठीक है, और कोई प्रश्न है या यहां पर विराम करें? बोलिए। शरीर, इनका सवाल है शरीर में 9 द्वार है पर कोई बोलता है कि 10 द्वार है, तो 10वां द्वार कहाँ है? तो मैंने भागवत से सीखा शरीर में 9 द्वार है, तो मैं भागवत से कहता हूँ 9 द्वार है। अब जिसने आपसे कहा 10वां द्वार है वो किधर है, मुझे क्या पूछे? और जिसने कहा उनसे पूछिए, वो दिखाएगा 10वां द्वार कहाँ है। मैं क्या बताऊँ अपने, देखिए हम लोग कोई भी अपने मन से यहाँ कुछ भी नहीं बोलते, यहाँ जो भी बैठते हैं इस व्यास आसन पे वो अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता है, वो शास्त्र के अनुसार ही बोलता है और अपने गुरु कृपा से और अपनी स्वानुभूति से ही वो बोलता है, अपने मनमाना कोई नहीं करता है। तो 10वां द्वार उन्हीं से पूछिए कहाँ होगा, वो कोई नए आविष्कारी वैज्ञानिक होंगे वो दिखाएंगे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।